tiếp xử với dân ông đế vị mà हम अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे इमोशनल एक्टिविटीज से गुजरते हैं, और जिनके बिना हमारा जीवन किसी मशीन के बने हुए रोबोट से ज्यादा नहीं होगा। प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, इनमें से एक है भक्ति। ईश्वर से भक्ति करते हैं, पिता माता से भक्ति करते हैं, देश से भक्ति करते हैं। उस भक्ति के ऊपर थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। जीवन में जब चारों तरफ से व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तब उसके अंदर की भक्ति अगर ईश्वर के प्रति प्रबल हो तो वही उसको साहस देता है, हिम्मत देता है, शक्ति देता है। हमेशा याद रखिए, जीवन में हम कितने भी बड़े बने, कितना भी बड़ा व्यक्ति बने, उतार चढ़ाव हमेशा होता है। और जब हम उतार में होते, नीचे जो गिरने की हालत में होते हैं, तब हम खुद के सहारा बन सकते हैं। और हम खुद के सहारा तभी बन सकते हैं अगर हमारा मन उतना निर्मल हो, अगर हम ईश्वर की भक्ति में डूबे हुए हो, तो वो उस ईश्वर की भक्ति हमें साहस देता है आगे बढ़ने के लिए। वो सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक परिवार के जीवन में भी जितनी भक्ति अधिक होती है उतना जीवन सरल और निर्मल होता है, उतना पवित्र होता है। जिस व्यक्ति में जितनी कम भक्ति मिलेगी वो व्यक्ति उतना ज्यादा कठोर, उतना ज्यादा निर्मम और उतने ज्यादा निर्दय दिखेगा आपको। भक्ति एक कोमल स्वभाव है इंसान का, जो व्यक्ति को बहुत कोमल बनाता है। महर्षि पतंजलि जब योग दर्शन की चर्चा करते हैं, योग की साधनाओं का उपाय बताते हैं, और योग साधना बड़ा कठिन मार्ग है, तो बताने के बाद वो कहते हैं, जब आपको ये मुश्किल लगे करना, जब आप वो थक जाओ, लगे कि कर नहीं सकते हो, तो ईश्वर प्रणिधाना, तो ईश्वर की भक्ति को तेज करो, तो ये रास्ता अपने आप सहज हो जाएगा। वो भक्ति क्या है? क्या ईश्वर की भक्ति करने से ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है? भक्ति का स्वरूप क्या है? थोड़ी बहुत चर्चाएं उसी पर, अभी एक दो रविवार इसी पर चर्चा करेंगे। महर्षि नारद ने लिखा एक नारद भक्ति सूत्र है कि भक्ति क्या है। तो लिखते हैं, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। उसके प्रति जब परम प्रेम आ जाए तो वो भक्ति कहलाता है। ये नहीं कहा कि ईश्वर के प्रति, उसके प्रति जब परम प्रेम आ जाए, वो ईश्वर हो सकता है, वो देश हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके पिता माता हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जिसके प्रति आपका परम प्रेम जग जाए वो उसके प्रति आपकी भक्ति है। ये परम प्रेम क्या है? प्रेम तो आप सभी जानते हैं, अगली स्लाइड चलाएंगे। प्रेम का मतलब लव है, और आप खुद करते रहते हैं सब किसी ना किसी से। और जितना आपका आपका लेवल ऊंचा होगा उतने आपका प्रेम करने का दायरा बढ़ता जाएगा। जितने आप महान होते जाएंगे उतने ज्यादा लोगों से आप प्यार करते जाएंगे। या कह सकते हैं, व्यक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्यार करे उतना ज्यादा महान होता जाता है। पर कभी कभी इस भक्ति को समझने के लिए, क्योंकि नारद कहते हैं जो परम प्रेम है वो भक्ति है, परम क्या है समझ में नहीं आता है। प्रेम तो हम सब करते हैं, तो हमें प्यार को थोड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी। एक होता है, जितने तरह के चीजों को हम प्यार का नाम देते हैं वो बड़े अलग अलग चीजें होती हैं, जिनको हम प्यार के नाम पर के प्यार का एक एक एनवलप उस पर चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, एक तो होता है काम, जो हम दूसरों से प्यार करते जब सिर्फ और सिर्फ हमें अपने सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन करना हो, हमें शारीरिक या इंद्रियों की सुख पाने के लिए जब हम किसी से संबंध बनाते हैं, मन में कहीं कोई हलचल नहीं है, सिर्फ शरीर और इंद्रियों का भूख है, वो खाने पीने में हो, वो लोगों के साथ रिश्ता बनाने में हो, जब सिर्फ इंद्रिय ही मैटर करता है, शरीर ही मायने रखता है, तो ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं कहते, उसको काम कहते हैं, लस्ट। उससे थोड़ी बेटर क्वालिटी का, जिसको हम प्यार कहते हैं, परिवार में माँ बाप बच्चों से करते हैं, पति पत्नी करते हैं, बाजार में हम एक दूसरे दोस्तों से प्यार करते हैं, जहां इमोशन मायने रखता है, जहां आपका माइंड काम करता है, जहां आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है व चाहिए होता है, वो प्रेम है। एक दूसरा है परम प्रेम, जिसकी चर्चा महर्षि नारद करते हैं भक्ति के बारे में, जिसको सुप्रीम लव आप कह सकते हैं, परम मतलब जहां शरीर की भूख नहीं, जहां मन का सेटिस्फेक्शन नहीं, जहां आत्मा की जरूरत पूरी होती है, उसे हम परम प्रेम कहते हैं। पर ये जो दो एक्सट्रीम है, एक शरीर का और एक आत्मा का, ये दोनों एक्सट्रीम जो चीजें हैं, एक भक्ति या परम प्रेम और एक काम वासना या लस्ट, इन दोनों के बीच में प्रेम होता है। प्रेम जब शरीर की ओर एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन की ओर अट्रैक्ट होता है बॉडी के प्रति, तो वो लस्ट होता है, और वो प्रेम जब आत्मा की ओर पूरी तरह खींच जाता है तो वो भक्ति होती है। जब वो प्रेम का सब्जेक्ट जो है, वो जो आधार है, वो मन है, और जो प्रेम मन में रहता है वो नॉर्मल कन्वेंशनल प्रेम होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ज्यादातर जो मॉडर्न एज में, ये आधुनिक युग में, जिसको हम ये जो ये तो नहीं कह सकते कि नई जनरेशन में, हमेशा हर जनरेशन में ये गड़बड़ियां रहती है। एक टीन एज में जो लव आपको दिखता है, बेसिकली वो लव कम लस्ट ज्यादा होता है, जहां अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की भावना होती है, सामने वाले का कोई कदर नहीं है, सामने वाले के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, सामने वाले वस्तु के प्रति कोई स्नेह नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ अपना फायदा लेना है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जब हम प्यार दिखाते हैं, वो लस्ट होता है। और जिसके पीछे भावना यही होती है कि मुझे अपने शारीरिक सुख चाहिए, जो भारत में जो प्रबल भक्ति आंदोलन चला, उसमें एक बड़े आचार्य हुए आचार्य चैतन्य बंगाल में, तो वो लिखते हैं कि ये काम में और प्रेम में क्या फर्क है, तो लिखते हैं आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा टू सेटिस्फाई वंस ओन सेंसेस इज कॉल्ड लस्ट। जब एक हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी से प्यार करते हैं, किसी चीज को पसंद करते हैं, तो वो प्यार नहीं होता, वो लस्ट होता है, वो काम वासना होती है। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे हम प्यार का नाम देते हैं, द बॉय वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज सेंसेस, द गर्ल वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हर सेंसेस, और जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो दिल से परेशान, तो इसमें प्यार कहां से है, ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। और ये उतना ही अस्थाई है, क्योंकि शरीर अस्थाई है, शरीर मुश्किल से 100 साल का जिंदगी है, और शरीर के द्वारा किया गया प्रेम भी अस्थाई होता है, कभी तो 2 दिन के लिए होता है, कोई 2 साल के लिए होता है। जहां तक प्रेम का संबंध शरीर या इंद्रियों तक है, वो अस्थाई है, वो कभी टिकता नहीं है। अगर हमारे समाज में तलाक बढ़ रहा है, इसका कारण है, इसका मतलब है कि हम प्रेम, इमोशनल लव के जगह हम फिजिकल लव में ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए अस्थाई शादी शादियां अस्थाई हो रही है, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन का सेंटर बदलता जाता है, हमारा भूख बदलता जाता है। जो प्रेम है, अगली स्लाइड करें, जो कन्वेंशनल लव है, जिसको मानसिक संबंध जहां मायने रखता है, जहां हमें प्यार करते इसीलिए कि हमारे मन को संतुष्टि मिले, या इमोशनल ग्रेटिफिकेशन हो, ये प्योर है, ये लस्ट से बेटर है, शारीरिक भूख से ये बेटर है, पर ये प्योर पूरी तरह प्योर नहीं है, ये सेल्फलेस नहीं है, इसमें खुद की डिमांड है। छांदोग्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की जो संवाद है, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूं, आपकी इच्छा है तो आप अपना गृहस्थ जीवन बिताओ और सांसारिक सुखों का आनंद लो, मैं तो चला सन्यासी होकर के। तो याज्ञवल्क्य, और तभी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य को संसार या गृहस्थ जीवन का महत्व समझाते हैं, उन्हीं बातचीत में मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती हैं, जिसे आप प्रेम कहते हो, प्यार कहते हो, जो सांसारिक या सामाजिक प्रेम है, वो प्रेम इसीलिए है कि हम खुद से प्रेम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद से प्यार करता है इसीलिए वो पत्नी से प्यार करता है, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है इसीलिए पति से प्यार करता है, क्योंकि खुद से प्यार करता है इसीलिए बच्चों से प्यार करता है, क्योंकि खुद से प्यार करता है इसलिए देश से प्यार करता है। उसका जो प्यार है, जो दूसरों के प्रति जो प्रेम है, वो रिलेटिव है, वो खुद को प्यार करता है इसीलिए आप देखेंगे हम जो देशभक्ति करते हैं, कहते हैं मेरा देश महान, अब मैं इथियोपिया का रहने वाला हूं या सोमालिया का, अफगानिस्तान का, या मैं भारत का या अमेरिका का या फ्रांस का या जापान का, जो जिस देश का है वो अपने देश पर गर्व करता है। वो अलग बात है कि वो इथियोपिया सोमालिया देश में आपके लिए वो बड़ा गरीब देश है, बड़े डाकू शैतानों का देश है, वो लड़ते रहते हैं, पर वहाँ का व्यक्ति अपने आप को इथियोपियन समझ के गर्व करता है, जैसे आप भारत के समझ कर गर्व करते हैं, आप अमेरिकन समझ के गर्व करते हैं। इसीलिए गर्व नहीं करते हैं कि भारत महान है, अमेरिका महान है, इथियोपिया महान है या अफगानिस्तान महान है, क्योंकि आप अपने आप को महान समझते हैं, अपने आप से प्यार करते, इसलिए जिस चीज से आप बिलोंग करते उसको महान होना जरूरी है। आप इसीलिए किसी से प्रेम नहीं करते कि वो प्यार के लायक है, इसीलिए कि आप अपने से प्यार करते और आपके आसपास के हर चीज अच्छा होना चाहिए, हो ना हो उसको अच्छा साबित करना जरूरी है। जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में है और जब तक है उससे अच्छा कोई पार्टी हो ही नहीं सकती, उससे अच्छा लीडर कोई हो नहीं सकता, इसीलिए नहीं कि उनको वो लीडर पसंद है, इसीलिए कि वो पार्टी पसंद है, इसीलिए कि उनको खुद पसंद आते हैं। जैसे ही पार्टी चेंज कर दिया वैसे ही लीडरशिप चेंज हो गई, अब सब बदल गया, अब वो कल तक वो जो अच्छा था आज वो बुरा हो गया, वो गंदा हो गया, ये अच्छा हो गया, अच्छा वो नहीं हुआ। मुझे जहां, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं, जो जो मेरे से रिलेटेड रहेंगे मैं उनसे प्यार करूंगा। कल तक तो हम फ्रेंडशिप में जान देने की तैयार होते थे, शादी के 6 साल के बाद तलाक की नौबत आ गई। क्यों? अब मेरे जो इमोशन है अब उससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अब वो मेरे से रिलेटेड नहीं रहा। घर में जो लड़ाइयाँ होती है कभी कभी, एक नॉर्मल लड़ाइयाँ होती है पति पत्नी में, कि आप ऑफिस में ज़्यादा टाइम देते हो, सोशल वर्क में ज़्यादा टाइम देते हो, तो मतलब आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, लड़ाइयाँ होती है। कभी कभी लड़ाइयाँ भयंकर हो जाती है, और जो ज़्यादातर सोशल लाइफ में रहते हैं उनको बड़ी समस्याएं, जिन आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है। क्यों? जिसको हम प्यार कहते हैं, सो कॉल्ड प्यार, उसका पहला शर्त है कि आपका सबसे ज्यादा अटेंशन मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मैं क्या फ्री का प्यार करूं। मतलब अगर आप इसको एनालिसिस करें, कोई किसी से फ्री में प्यार करने को तैयार नहीं है, कोई नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब मैं अगर आपसे प्यार करूं उसके बदले तुम मुझसे प्यार करना जरूरी है, मुझे अटेंशन देना जरूरी है। पति चोरी करके पकड़ा जाए या डाका डाल के पकड़ा जाए, मार के पकड़ा जाए, तो भी कोर्ट में पत्नी पति का साथ देती है या पत्नी के साथ पति देता है। क्यों? जब तक तुम मेरे से रिलेटेड हो तब तक तुम बुरा हो ही नहीं सकते हो। और अगर उसी झगड़े के बीच में, कोर्ट कचहरी के बीच में, पति पत्नी में तलाक की बात आ गई, पत्नी अगले दिन पलट के, नहीं यही चोर है, ये डाकू है, कल तक हमारा, क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड थी तो था, तो अब वो चोर हो ही नहीं सकता, वो खून कर ही नहीं सकता। पर अगर अनबन हो गया, बात सेपरेशन की आ गई, फिर वही अगले दिन विटनेस देने पहुंच जाएगी, जी मैंने ही देखा था मारपीट। तो मतलब दुनिया तब तक अच्छी है जब तक वो मेरे मेरे रिलेटेड है। इसीलिए ये जो प्यार है वो इतना इतना सेल्फलेस नहीं है, यहाँ सेल्फिशनेस काम करता है, पर ये ठीक है, ये इमोशन के लेवल पर होता है, ये माइंड के लेवल पर, यहाँ यहाँ शारीरिक भूख कम है, मन का भूख ज्यादा है। इसीलिए मैत्रेयी समझाती है याज्ञवल्क्य को कि व्यक्ति किसी से भी प्यार करता है वो प्यार इसीलिए करता है क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। व्यक्ति जिससे भी प्यार करे, अगर आप प्यार करते, और ये जरूरी है, ये अच्छी बात, इसको कोई आपको नेगेटिव मत लीजिए, खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है संसार में जीने के लिए। पर ये प्यार का एक मध्यम कोटि का, एक मिडिल लेवल का स्टैंडर्ड। और क्योंकि शरीर 50 से 100 साल का आयु है, शरीर का बड़ा अस्थाई है, तो शारीरिक प्रेम भी अस्थाई होता है। मन शरीर से ज्यादा उम्र वाला होता है। देखिएगा, बार बार हम चर्चा करते हैं कि हम सबके तीन तरह की उम्र होता है। एक तो शारीरिक उम्र है, जिसमें बाप बड़ा है, बेटा छोटा है, बड़ा 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 भाई या बड़ी बहन बड़े हैं, और जो छोटे भाई छोटी बहन छोटे हैं शरीर के कारण। एक मन का उम्र होता है, हो सकता है कि मैं शरीर से 50 साल का हूं या 5 साल का हूं, पर मेरा मन 50 लाख साल का हो सकता है, 50 करोड़ों साल का हो सकता है, 50,000 साल का हो सकता है। हो सकता है बेटे का मन मेरे से ज्यादा बुजुर्ग हो। मन शरीर से ज्यादा स्थायी होता है, पूरी तरह अनादि अनंत नहीं है, उसको भी नष्ट होना होता है। पर जब व्यक्ति मरता है तो शरीर छोड़ता है, मन रह जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हजारों शरीर हम बदल डालते हैं, मन चलता रहता है। कब तक? जब तक आपको पूरी तरह मुक्ति ना मिले। तो मन का उम्र ज्यादा है, इसीलिए शारीरिक प्रेम से ज्यादा स्थायी थोड़ा मानसिक प्रेम होता है। पर ये प्रेम जिसके हम प्रेम कहते हैं, उसमें हमारा हमारा खुद का स्वार्थ छिपा होता है। हम बिना स्वार्थ के प्रेम कर ही नहीं सकते, बिना खुद को प्रेम किए तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। अगला है, आगे स्लाइड करें, जिसकी बात महर्षि नारद करते हैं, जिसकी बात महर्षि पतंजलि करते हैं, सातु परम प्रेम रूपा। वो जो परम प्रेम फिर क्या है? प्यार तो हम सब करते हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सर्कल में, किसी ना किसी से प्यार तो करते हैं। परम प्रेम जब प्यार के बदले फिर कुछ आप मांगते नहीं है, जब जब आपका कोई एक्सपेक्टेशन रहा ही नहीं। जो रेगुलर प्रेम है, जो उसमें हम जब भी प्यार करते हैं कुछ एक्सपेक्ट करके ही प्यार करते, अगर वो नहीं मिलता तो फिर लड़ाइयां होती है। वो जो निश्चल प्रेम है, जो परम प्रेम है, जब आप प्यार करें, जहां आप खुद के लिए दूसरे के लिए मिटने को तैयार हो जाएं, अपनी चिंता नहीं, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए चिंता है, वो बदले में क्या देगा ये सोच नहीं है, मैं कितना ज्यादा से ज्यादा उसको खुश कर सकूं, उसको खुश करने के लिए मैं कितनी कुर्बानी दे सकूं, कितना त्याग कर सकूं, जहां मेरा दर्द उसके सामने कम पड़ जाता है, उसके जुखाम के सामने मेरा मेरा कैंसर कम पड़ जाता है, तो वो परम प्रेम हो जाता है, जब मुझे अपना केयर नहीं है उसके लिए। ऐसा नहीं कि ये कोई अनहोनी प्रेम है, आप बहुत सारे रोमांटिक, इस तरह के रोमांटिक लव के बारे में सुनते पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, रोमियो जूलियट से लेकर के 50 तरह के पढ़ते रहते हैं, ये भी इंसान थे और लड़के लड़कियां थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एक दूसरे के लिए खुद को मिटाने को तैयार होते थे, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करो, अगर मैंने तुम्हें गुलाब का फूल दिया तुम्हारे बर्थडे में तो मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आया, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। वहां जहां देने के लिए व्यक्ति तैयार है वो परम होता है, जहां देने के साथ कुछ शर्त जुड़ा होता है वो नॉर्मल होता है, जहां देना कुछ नहीं सिर्फ लेना है वो बड़ा अधम किस्म का प्यार होता है। भक्ति उस परम प्रेम का नाम है जहां खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए व्यक्ति तैयार हो, बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करे, उसी को परम प्रेम कहते हैं। आप कह सकते हैं वो इंटेंसिटी जो है, जब प्रेम उस इंटेंसिटी पर पहुंच जाता है, उस चरमता पर पहुंच जाता है, तब वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो प्रेम नहीं रहता तो वो भक्ति हो जाती है, उसमें फिर सेल्फ कहीं आता नहीं है, क्योंकि परम प्रेम तभी होता है जब हम खुद को मिटाते हैं। भक्ति और अहंकार ये दोनों कभी साथ नहीं रहते हैं, भक्ति वही होती है जहां खुद मिट जाता है, जहां मैं मिट जाता है, मैं के बारे में सोच मिट जाता है, सिर्फ तू ही तू रह जाता है, तो फिर वहां भक्ति होती है, तब परम प्रेम होता है। इसी को हमारे ऋषि मुनि लोग कहते हैं शुद्ध प्रेम, प्योर लव। प्योर मतलब जिसमें कुछ मिलावट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई 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 एक्सचेंज नहीं है, कोई बर्गेनिंग नहीं है, और ऐसा प्रेम सिर्फ आत्मा से होता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, चेतन है, इसीलिए वो आत्मा का प्रेम है। और ऐसी अवस्था में फिर क्या आशा क्या रहती है, बस तुम खुश रहो मेरा जो भी हो। जब इस लेवल पर व्यक्ति उतर जाता है तो वो आत्मिक प्रेम होता है, वो आत्मा का संबंध हो जाता है, वो शरीर मायने नहीं रखता, वहां मन मायने नहीं रखता, वहां सिर्फ आत्मा मायने रखता। ये प्रेम का जो हाईएस्ट फॉर्म है, इसीलिए इसको संस्कृत में कहा परम प्रेम, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव, द इंटेंस ऑफ लव, इसको पाने पर यल्लब्वा पुमान सिद्धो भवती, अमृतो भवती, तृप्तो भवती। जिसको पाने पर व्यक्ति अमृत हो जाता है, इमोर्टल हो जाता है। इमोर्टल क्यों बनेगा, क्योंकि आप ये शरीर या मन से रिलेटेड बात नहीं, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप परम प्रेम कर ही नहीं सकते। मरने का अर्थ फिजिकली नहीं, ईगो जब तक नहीं मरता है, अपने अस्तित्व को जब हम खो नहीं देते तब तक हम प्यार करी ये परम प्रेम कर ही नहीं सकते। जब आपका अस्तित्व आपके लिए मायने नहीं रखता तो फिर मरना क्या, शरीर को त्यागना कोई मौत थोड़े ही है उन लोगों के लिए जिसके लिए शरीर मायने नहीं रखता। ये जो परम प्रेम है इसी का नाम भक्ति है। अगली स्लाइड पर चले, इसी परम प्रेम को हम भक्ति कहते हैं, जहां डिवोटी भक्त या व्यक्ति क्या सरेंडर करता है, अपने ईगो को, अपने अहंकार को सरेंडर करता है, मैं कुछ भी नहीं, जो भी हो तुम ही हो। इसीलिए भक्ति का जो दूसरा नाम पतंजलि ने दिया, नारद जिसको भक्ति कहते हैं, पतंजलि उसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के सामने अपने आप को सौंप देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, सैक्रिफाइस कर देना कि मैं कुछ नहीं, जो भी हो तुम ही हो, कंप्लीट डेडिकेशन। और वो अनकंडीशनल, कोई कोई डिमांड नहीं है कि मैं 3 दिन से प्रार्थना कर रहा हूं मुझे नौकरी क्यों नहीं लगी, अब मैं मंदिर बदल डालूंगा, तीस साल से मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी बीवी मेरी पत्नी या पति ठीक नहीं हो रहा है, तो तू कैसा भगवान है? अब मैं भगवान बदल डालूंगा। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, अनरिजर्व है। और खुद को मिटाना है, इसीलिए कहा सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, जहां केवल परम रूप रह जाए। और जब उस परमत्व का प्राप्त कर देते हैं, वो अमृत स्वरूपा, फिर आपका अमरत्व की ओर यात्रा चलती है, क्योंकि आपके लिए शरीर और मन ये बेकार हो जाते हैं। आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ आत्मा की पुकार होती है, और आत्मा की कोई डिमांड नहीं होता, आत्मा की कोई चाहत नहीं होती। चाहत तो मन का होता है या शरीर का होता है। भक्ति भगवान को पाने के लिए नहीं होती है, भक्ति ईश्वर को पाने का कोई रास्ता नहीं है, भक्ति खुद को मिटाने का रास्ता है। जब हम खुद को मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, खुद को मिटाने का मतलब नहीं है कि आप अब खुद को मारें। खुद को मिटाने का मतलब होता है हम अपने जो ईगो है, जो अहंकार है, जिसमें हम 24 घंटे जिस सोच में डूबे रहते हैं, मैं, मेरे बच्चे ने मुझे मुंह देखा, ठीक से मेरे जवाब नहीं दिया, मेरे पति या पत्नी ने मेरी बात नहीं सुनी, समाज में मेरा कोई प्रेस्टीज नहीं रहा, इसके कारण जो दर्द है, ये है मैं। ये मैं जब मरता है, भक्ति का पहला काम है वो मैं को मिटाता है। और जब मैं मिट जाता हूँ, तो वो जो वो है वो फिर सामने प्रकट होता है, वो वही आत्मा परमात्मा प्रकट होता है। अगली स्लाइड, ये जो परम प्रेम रूपा भक्ति है, इसकी तीन पिलर्स हैं, जिस पर जब आप भक्ति करते हैं ईश्वर से, परमात्मा से, मतलब तो व्यक्ति से, जिससे भी आप प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके तीन पिलर होते हैं। उन तीन पिलर के ऊपर ही भक्ति टिकी होती है। मतलब तीन शाखाएं हैं, तीन एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा हम अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। पहली है स्तुति, ग्लोरिफिकेशन, प्रेजिंग का, प्रार्थना, कुछ मांगना, प्रेयर करना, या उपासना, या कम्युनिटी, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। स्तुति, आप रोज जब हवन करते हैं, यहाँ करते हैं, तो हवन से पहले आप जो 8 मंत्र पढ़ते हैं, उसमें स्वामी जी लिखते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, भक्ति के मंत्र है। मतलब इसमें ईश्वर के ग्लोरिफिकेशन भी है, इसमें प्रेयर भी है, कुछ मांगते भी हैं, और कम्युनियन, जो अपने को उससे जोड़ने की प्रक्रिया भी होती है। स्तुति क्या है? भक्ति का पहला खंबा है स्तुति। भक्ति क्या है? परम प्रेम। प्रेम का ध्यान रखिएगा, तभी आपको स्तुति समझ में आएगी। आप ईश्वर की स्तुति करते हैं, आप महान हैं, आप अमुक हैं, आप उनके गुणगान करते हैं। ग्लोरिफिकेशन का मतलब क्या है? उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो उसके गुण है, जो उसके धर्म है, जो उसके कर्म है, उसकी आप प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, गुणगान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे भी आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं, इसका पहला सबूत है कि अब आपको वो हर तरह से अच्छा लगता है। आपके गुण, आपको उसके गुण अच्छे लगते हैं, आप उसके गुणों की तारीफ करने लगेंगे। किसी से भी आप तारीफ प्यार करें, अपने रेगुलर लाइफ में भी, जैसे जैसे आपका प्यार किसी के प्रति बढ़ने लगता है, तो कैसे लोग पहचानते हैं कि आपकी उसके प्रति तारीफें बढ़ने लगती है, आप तारीफ बढ़ाने लगते हैं। मतलब चाय अगर नमक डाल के बनाया तो भी बड़ा टेस्टी लगेगा। कैसे पता लगता है कि प्यार कम हो रहा है? कि चाय परफेक्ट होने पर भी कि आपको लगे कि चीनी कम है, चाय थोड़ी और उबलनी चाहिए थी, दूध कम है। जो प्रशंसा है, ये प्रशंसा आपके प्यार को, खुद के प्यार को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर क्रिटिसिज्म क्या आ चुका है उसके प्रति, किसी खास व्यक्ति के प्रति टेंडेंसी आ चुकी है, मतलब आप समझ लीजिए, आप माने ना माने, आपके प्यार में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां शुरू होने लग गई, तो आप उसको रिवाइज करना चाहें तो क्या करें? तो प्रशंसा करने की शुरू करें। अब हमारे लोगों में एक और प्रॉब्लम है, अब प्रशंसा करना है तो शुरू हो गए कि ऐसे पेड़ पर झाड़ी पर चढ़ाएंगे कि कोई बचने बच भी नहीं पाए। किसी को आपको कहना है कि ये बड़ा अच्छा दिखता है, तो अच्छा दिखना ऐसा कि हम सीधे ऐसा लगता है दुनिया में सबसे अच्छा यही दिखता है और कोई दिखता नहीं। ये थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है तो लगता है न्यूटन और आइंस्टाइन के बाद नंबर इसी का आ जाता है जब हम तारीफ करने लगते हैं। खास करके हम भारतवासी जो लोग हैं वो शब्दों के बड़े सुंदर खेलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों को देखेंगे कितने कितने बड़े बड़े बोम्बास्टिक वर्ड यूज करते हैं जब अंदर कुछ नहीं होता है, खोखला होता है। तो अगर आपकी प्रशंसा सत्य पर टिकी हुई नहीं है तो बकवास है, वो तो झूठ है। आप अपने आप को ठगते हैं और सामने वाले को भी ठगने की कोशिश करते हैं, आप चीट करते हैं। देखिए, प्रशंसा जब सब्सटेंशियल ना हो, उसके अंदर कुछ मैटर ना हो, आप झूठी तारीफ करते हैं, वो आप खुद को भी बड़ा हल्का बनाते हैं और जिसकी तारीफ करते हैं आप उसकी बेइज्जती करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सवाल इसकी हम नहीं कर रहे हैं कि आप किसी की झूठी तारीफ करें। जब भी आपका प्रेम सच्चा होता है तो आपके मन से सच्ची प्रशंसा निकलती है, और जब सच्ची प्रशंसा निकलती है तो प्यार और बढ़ता है। जैसी जैसी प्रशंसा आप सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपका प्यार बढ़ता जाता है। हमारे बच्चे व हम सब भी, आप में भी होंगे, किसी खिलाड़ी के बड़े पसंद करते हैं, किसी फिल्म स्टार को पसंद करते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर को पसंद करते हैं, किसी रिलीजियस लीडर को पसंद करते हैं, या किसी स्वामी आचार्य महापुरुषों को अपना पसंद करते हैं। अब जिसको आप जितना अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में आप प्रशंसा सुनना चाहते हैं, प्रशंसा करते हैं घूम घूम के, और कोई उसकी निंदा कर दे तो उसकी खैर नहीं छोड़ते। मान लीजिए आजकल ऐसे विषय अंतर है, मजाक में बोलता हूं, हमारे भारत में पॉलिटिक्स में मोदी हवा चल, बहुत लोग बड़े पसंद करते हैं। अब पसंद ऐसा करते हैं कि वो चाहते हैं कि 24 घंटे तक उनको कोई मोदी की तारीफ करता रहे, और वो भी करते रहे। और गलती से आपने कह दिया मोदी के बारे में दो लाइन, तो वो छोड़ने वाले नहीं होते। बात मोदी की नहीं, आप तेंदुलकर की करो, जो भी लोग मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो अमेरिका में आपके अपने कुछ जो मनपसंद क्रिकेटर तो यहाँ होते नहीं, खिलाड़ी होंगे फुटबॉल के, बेसबॉल के, या फिल्म स्टार होंगे, या पॉलिटिकल लीडर होंगे, जिसको, या बहुत सारे लोग जो अपने अपने गुरुओं को बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने माँ बाप से भी ज्यादा मानते हैं, वो आपको भी उसकी तारीफ सुनाएंगे और आपके मुंह से तारीफ सुनना पसंद करेंगे। नहीं करो तो आपसे ही रिश्ता खत्म करेंगे, और अब बुराई कर दी तो आपकी खैर नहीं होती है। ये सिम्टम क्या है कि आपका प्यार बढ़ रहा है? ये सिम्टम है कि आपका, जैसी जैसी आपकी प्रशंसाएं बढ़ेगी, आप दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई उसके बारे में प्रशंसा करे, आप खुद उसकी प्रशंसा करते हैं, आप उसकी बुराई सुनने को तैयार नहीं होते। इसका एक ही लक्षण है कि आपकी प्रेम बढ़ रहा है। ईश्वर की स्तुति का यही मतलब है कि जब हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा करने से प्यार बढ़ता है। जब आप सत्संग में आते हैं, ईश्वर के बारे में सुनते, प्रशंसा सुनते, तो प्यार बढ़ता है। ये सिम्टम है कि आपके ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। जरूरी नहीं ईश्वर के प्रति, किसी के प्रति, किसी जिसके प्रति भी आप प्यार करते हैं, अगर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा सुन रहे हैं, उसकी निंदा नहीं सुन रहे हैं, मतलब है कि वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि आपका प्रेम बढ़ रहा है। स्तुति का यही पहला फायदा है कि ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसलिए जरूर ईश्वर का गुणगान करिए कि ईश्वर कितना महान है, ये बड़ी जरूरी है। उसके बारे में सुने, बोले, करें, ये बड़ी जरूरी है। उससे फायदा क्या होता है? पहला फायदा, उससे प्यार बढ़ता है। अगर पति पत्नी में खटास चल रहा है तो प्रशंसा करना शुरू कर दो। कुछ नहीं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, आप ईश्वर की क्या तारीफ करेंगे, कैसे प्रशंसा करेंगे? आप किसी व्यक्ति की तारीफ आप कैसे करते? आप 24 घंटे क्या सामने जाकर बोलेंगे तुम बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो, अच्छे सुंदर हो, ऐसे बोल के तारीफ करते? अच्छा कपड़ा पहनकर आया, बड़ा अच्छा कपड़ा है, कहाँ से लिया? आपने तारीफ कपड़े की। कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री में बनता है, बेचने वाला दुकानदार बेचता है, पर जिसने पहना आपने कपड़े की तारीफ कर दी, तो उस दिन आपको बढ़िया चाय मिलेगा, बढ़िया कप मिलेगा, यकीन मानिए। कपड़े पहनने वाला खुश होता है जब आप उसकी कपड़े की तारीफ करते हैं। आप बोलिए कि ये घर बड़ा अच्छा है, घर थोड़े ही खुश होगा, घर वाला खुश होगा। और अगर दो चार बार तारीफ करती तो आपको घर में बुला के कितना खातिरदारी करेगा। तो इसका मतलब दुनिया में आप तारीफ करने के लिए ढूंढे, आपको करोड़ों चीजें मिलेगी। झूठे तारीफ करने की जरूरत नहीं, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जो तारीफ करने लायक है। ये ढूंढने की जरूरत है। कभी कभी ढूंढने पर हमें लगता है कि तारीफ करने लायक तो कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों? अब प्यार कम हो गया। अब ढूंढने लगे तो आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। एक छोटी सी बात करके बात खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इस पर और चर्चा करेंगे। तो पति पत्नी की झगड़ा हुआ, अब कहेंगे पति पत्नी को बीच में क्यों लाते हैं? पति पत्नी का प्रेम जो होता है वो जरा ज्यादा शाश्वत होता है, प्यारा होता है। अगले बार हम माँ बाप के बच्चों के भी करेंगे। दोनों में तलाक की नौबत आई है और वो पहुंचे कंसल्टेंट के पास, जो जो सलाह देते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने पूछा क्यों अलग होना चाहते हो? कि अब ये शुरू हो गए बुराई करने, इसमें ये 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 बुराई है, तुम बताओ कि ये बुराइयां है, तुम तो थक गया। तो ठीक है, अगली उनके अगली डेट थी नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए, नेक्स्ट डे आए। बोले काम करो, ठीक है आपको अलग होना है, बुराइयां बहुत है, क्या इनमें कोई एक अच्छाई नहीं है? कोई दो चार अच्छाइयाँ बताओ कि इसमें क्या अच्छाई है। तलाक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, अच्छाइयाँ कुछ बताओ। कुछ भी अच्छाइयाँ नहीं है ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, शादी कैसे थी? वो भी लव मैरिज किया, उसको अच्छाइयाँ दिखी होगी, क्या था? तो गिनो, हिसाब करो। अच्छा चलो एक हफ्ते के बाद आना, कागज में नोट नोट करके दोनों लाना, ढूंढना कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ है, ढूंढ के लाना। तब दो तीन दिन तक किसी को एक भी कहीं अच्छाई दिखी नहीं, टेम्परामेंट चढ़ा हुआ था, उससे में लाल पीले। तो अब काउंसलर ने कहा है लिखकर लाना है, तो अब सोचने लगे शुरू शुरू में, बीमार पड़ता हूँ बा पढ़ती हूँ, बड़ा केयर करता हूँ, सारा काम धंधा छोड़ के मेरे सेवा में लगा रखता है। वाले दूसरा है कि कोई अगर मुझे मेरे बारे में कुछ कहे तो सह नहीं पाता, सह नहीं पाता। बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई। अगले दिन जब एक हफ्ते के बाद काउंसलर के पास पहुंचे तो बड़ी लंबी लिस्ट थी, खत्म ही नहीं हो रहा। काउंसलर ने कहा बुराइयां बता। बुराइयां है कि आजकल ये प्यार करना कम कर दिया है, आजकल इधर ध्यान देता है, उधर ध्यान देता है। अब खुद को एक दूसरे की जब पढ़ाया कि एक दूसरे को के प्रति कितने अच्छे गुण एक दूसरे में एक 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 दूसरा रिकॉग्नाइज करता है, खुद को भी पता नहीं था कि सचमुच में इतना अच्छा था अपनी पत्नी के प्रति, मम्मी इतनी अच्छी थी अपने पति के प्रति। तो काउंसलर ने कहा देखो 80% तुम लोग एक दूसरे के लिए जान देते हो, 20% लड़ाई के लिए कहते हो कुछ बुराइयां। जब आप अच्छाइयां ढूंढने लगोगे तो फिर प्यार बढ़ने लगेगा अपने आप। तो जब भी प्यार कम होता दिखे तो अच्छा यहाँ ढूंढने लगो, शुरू में एक दो दिन दिखेगा नहीं, फिर जब शुरू में आप पानी में हाथ डालने लगोगे, इतने सामान मिलेंगे, इतने आप बटोर नहीं सकते हो, इतनी अच्छाई आपको देखने लग जाएगा। उल्टा है, जब आपको बुराइयां ढूंढना है तो फिर तो आप स्वर्ग में भी बुराइयां ढूंढेंगे, वो तो आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कोई आदमी व कोई महिला नहीं बची जिसकी आप बुराइयां नहीं कर सकते। तो ये सवाल उठता है, अगर आपको प्रेम बढ़ाना है तो अच्छाइयां ढूंढिए, आपको मिलेगी और सच्ची मिलेगी, कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। और आपको बुराइयां ढूंढनी है तो बुराइयां मिलेगी। तो प्रेम जब बढ़ता है तो अच्छा प्रशंसा बढ़ती है, जब प्रेम घटता है तो निंदा बढ़ती है। और इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं। आप आगे तीन हफ्ते तक, तीन रविवार तक हम भक्ति पर चर्चा करेंगे, तो आप जरूर आइए, इस पूरे प्रकरण को सुनिए और बाकियों को भी साथ लाइए। अब हम चलते हैं।